श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां स्थान त्र्यंबकेश्वर जी का है। गौतमी तट का दिव्य ज्योतिर्लिंग अपना एक अनोखा रूप धारण किए हुए है। यहाँ के मंदिर के गर्भगृह में अन्य स्थानों की तरह शिवलिंग पर जलहरी अर्थात शालुंका अर्थात अर्घा नहीं है। उस स्थान पर उखली जैसा केवल गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे में अंगुष्ठ के आकार के 3 लिंग हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के ये 3 लिंग यानी त्रि अंबिकेश्वर ही हैं। उन तीनों में से महेश जी के लिंग पर से एक खोंडर का पानी हमेशा बहता रहता है। प्रकृति के द्वारा लगातार होने वाला ये अभिषेक ही है। इस ज्योतिर्लिंग में से कभी कभी सिंह की दहाड़ सुनाई देती है, कभी कभी आग की दिव्य ज्वालाएं भी निकलती हैं। ऐसे समय पर शंकर जी के क्रोध से बचने के लिए भंग मिश्रित दूध के घड़े लिंग पर उंडेल कर रुद्राभिषेक मंत्रों का जय घोष किया जाता है। पूरा दूध उस गड्ढे में रिस जाता है। दूध का रिसना जब बंद होता है तब प्रभु जी शांत हुए ऐसा माना जाता है। इस तरह का ये अलौकिक दिव्य ज्योतिर्लिंग संप्रति स्थान पर किस तरह प्रकट हुआ इसकी एक कहानी है। सह्यगिरी के प्रदेश में गौतम ऋषि का आश्रम था। आसपास की जमीन फसल के योग्य नहीं थी, बंजर भूमि थी, लेकिन आश्रम के पास पानी भरपूर होने के कारण चावल की फसल अच्छी आती थी। उस प्रदेश के लोगों को गौतम ऋषि ने भर भर कर अन्न दान किया। उनका ये बड़प्पन अन्य ऋषियों से सहा न गया। गौतम का पुण्य क्षय हो इस हेतु से अन्य ऋषियों ने गौतम के चावल के हरे भरे खेत में एक गाय को छोड़ दिया। हैक हैक करते हुए गौतम ने उस गाय को भगाने के लिए दर्भ फेंक कर मारा। दर्भ की मार से गाय तुरंत मर गई। गोहत्या का पाप गौतम के माथे लग गया। गोहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने घोर तपस्या की, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न हुए। गौतम को पाप से मुक्त कराने के लिए शंकर भगवान वहां गंगा को लाए और उस मृत गाय को जीवित कर दिया। गोदान करने वाली नदी गोदावरी बन गई। गौतम ऋषि के लिए आई हुई गंगा गौतमी गंगा बन गई। ब्रह्मगिरी से निकली तब मुहूर्त था कूर्मावतार के बाद वराह अवतार के बीच का संधि पर्व। गुरु सिंह राशि में था अर्थात सिंहस्थ था। माघ शुद्ध दशमी गुरुवार के मध्यान्ह समय पर गौतमी गंगा प्रकट हुई। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शंकर जी त्र्यंबकेश्वर बनकर दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में भक्तगणों के कल्याण के लिए बस गए। ब्रह्मगिरी का ये प्रदेश भी लिंग मूर्ति की तरह दिखाई देता है। उसकी चोटी से पावन गौतमी गंगा का जल झरझर करके बहता है। ब्रह्मगिरी के जिस कगार से गोदावरी निकलती है उस स्थान को गंगा द्वार कहते हैं। यहाँ के एक गोमुख से गंगा का पानी नित्य रूप से बहता है। गोदावरी माता का मंदिर भी इसी उद्गम स्थान पर है। मंदिर में माता की प्रसन्न मूर्ति दिखाई देती है। सिंहस्थ पर्व में प्रति 12 वर्षों के बाद यहाँ कुंभ मेला लगता है। लाखों लोग इस कुशावर्त में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं। इस कुशावर्त तीर्थ के चारों ओर बरामदे बनाए गए हैं। यहाँ पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं ऐसी भक्तों की मान्यता है। बहुत साल पहले अमरदक झील के परिसर में कुछ वन्य जातियां रहती थीं। उनमें से दारुक नाम की एक स्त्री ने गिरिजा की अर्थात पार्वती की घोर उपासना की। देवी पार्वती प्रसन्न हुईं। उन्होंने दारुका को इस परिसर की भूमि प्रदान की। दारुका वहां की रानी बन गई। दारुका और उसका पति दारुक दोनों ने मिलकर यहां की वन्य जातियों को बहुत सताया, लूट मार की, घरों को आग लगाई और हजारों निर्दोष लोगों को कैद खाने में डाल दिया। न्याय मांगे तो किससे, क्योंकि चारों ओर उनका ही राज था। एक बार उन कैदियों में से एक ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जय घोष किया और भगवान शंकर की आराधना की। बाद में सभी कैदियों ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जय घोष शुरू कर दिया। इस प्रकार सभी भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। जय घोष से वहां का वातावरण गूंज उठा। ये समाचार पाते ही दारुक राक्षस वहां दौड़ता हुआ आया। क्रोध में आकर उसने कैदियों को जान से मारना शुरू किया। इतने में भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और उन्होंने दारुक राक्षस और उसकी पत्नी दारुका दोनों को मार डाला। लोगों का संकट दूर हुआ। भक्त जनों के आग्रह से भगवान शंकर उस आमर्दक अमृत झील में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस। अंजलि पर्वत पर हनुमान जी की माता अंजनी ने तप किया था। ब्रह्मगिरी का एक पहाड़ी किला आज भग्नावस्था में है। बरसों पहले वो देवगिरी के यादवों ने बांधा था। बाद में उस पर मुगल, मराठा, निजाम, पेशवा और अंग्रेजों का कब्जा रहा। देश की आजादी के बाद भी वो आज भग्नावस्था में है। इस ब्रह्मगिरी के फेरे लगाना बड़े पुण्य का काम माना जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार 1, 10, 31 बार परिक्रमा लगाई जाती है। ये परिक्रमा का कार्य बड़े पुण्य का कार्य माना जाता है। परिक्रमा के मार्ग में राम तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, नृसिंह तीर्थ आदि सुंदर स्थान है। श्रीमान पेशवाओं ने प्रति 25 हाथों के अंतर पर वृक्षारोपण किया है। पेशवा के शासनकाल में गुनहगारों को ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने की सजा दी जाती थी। मंदिर पर सुनहरी कलश दिखाई पड़ता है। मंदिर में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी तीर्थ का लाभ लेते हुए दिखाई देते हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर श्रीमान नाना साहब पेशवा ने बनवाया है। मंदिर के चारों ओर पत्थरों का मजबूत परकोटा है। प्रांगण विस्तृत है। पूर्व की ओर महाद्वार है। इस मंदिर के खंभों पर सुंदर नक्काशी का काम किया हुआ है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी का भी एक मंदिर है। नौबत खाने में हर रोज नक्कारे बजाने वाले उपस्थित रहते थे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर में नित्य पूजा, आरती और प्रसाद आदि कार्यक्रम होते हैं। विशेष समय पर बड़े उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। ऐसे विशेष पर्व में भगवान को ऊंचे वस्त्र और अलंकारों से सजाया जाता है और रत्नों से जड़ा ताज भी पहनाया जाता है। ये ताज नारो शंकर जी ने दक्षिण भारत में किए आक्रमण के समय प्राप्त किया था। ये ताज उन्होंने शंकर भगवान को समर्पित किया। सरदार विंचुकर जी ने भगवान के लिए एक सुंदर रथ भी दिया था। प्रति सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर की पालकी बड़े गाजे बाजे के साथ और बड़े ठाट से कुशावर्त जाकर वापस आती है। त्र्यंबकेश्वर के पास गौतम गोदावरी में अहिल्या नाम की एक छोटी नदी आकर मिलती है। इस संगम स्थल पर कुछ लोग नाग नारंबल यानी नाग नारायण बल नाम की एक विशेष विधि का आयोजन करते हैं। पूर्वजों की कुछ अतृप्त आशाओं के कारण कुछ लोगों को संतान नहीं होती। इस दोष को हटाने के लिए तथा कुछ बाधाओं को दूर करने के लिए ये नाग नारंबल विधि की जाती है। ये विधि उत्तर क्रिया की तरह होती है। कहते हैं कि मनौती के रूप में ये विधि पूरी करने पर उन लोगों को संतान प्राप्त होती है। किसी ने कहा है, तत्र गत्वा कुरु श्राद्धम पितृनुदृश्य यत्नतः। इस प्रकार ये त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग अनोखा, महान, पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थान है। जय त्र्यंबकेश्वर, जय त्र्यंबकेश्वर, जय त्र्यंबकेश्वर।